जीवात्मी न जीवान इति विज्ञाय राधे तन्नयनाम। रसायन के कुछ प्रेमा स्त्रिय वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे स्वकई परमात्मा निरूढ़ भावा नीश्वरो नुभजतो अभितुषोपि साक्षात् त्रयस्तनोति अवदराजी ओपि युक्ता। इसके संबंध में सनातन गोस्वामी की टीका का कुछ अंश हम लोगों ने पढ़ा था। कल साधारण इसका अनुवाद किया था जो गीता प्रेस के अनुवाद में या साधारण जितने भी भागवत के अनुवाद हैं शब्दों के अर्थ के अनुसार में उनका ये अर्थ किया। ये कहाँ गया हरिप्रिया कहाँ नहीं है? कहाँ हरिप्रिया को बुला दो। इसका साधारण अर्थ किया शब्द के अर्थों के अनुसार में कहाँ ये बनचरी नीच जाति की गोबर कंडे पिनने वाली असदाचार वर्जित क्या ये व्यभिचार जुस्ता स्त्रियां गोपों की और कहाँ इनका कृष्ण के प्रति रूह भाव महाभाव। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मैंने साधारण अर्थ बतला क्योंकि ये भगवान की भक्ति की महिमा है। भगवान की महिमा है कि उनका यदि कोई भजन करे और सबसे नीच व्यक्ति भी हो तो भगवान के प्रति ऐसे भाव हो सकते हैं। जैसे कोई रोगी व्यक्ति अमृत की महिमा नहीं जान करके भी और उसका सेवन करते उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान की महिमा नहीं जानने पर भी उनके प्रति कोई भी भाव हो तो उनका भगवान के प्रति ऐसा ही रूढ़ भाव हो सकता है। यहाँ पर भक्ति की महिमा दिखलाई किंतु हमारे गोस्वामी ने इसको इस रूप में नहीं लिया। गोपियों की तनिक भी कहीं प्रतिष्ठा की हानि होती हो हमारे गोस्वामी लोग उसे सह नहीं सकते। इसलिए सनातन गोस्वामी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो व्याख्या दी है वो जगत के कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। न तो वल्लभाचार्य के संप्रदाय में उसका अर्थ न निम्बादित्य में न मायावादियों की बात ही क्या। आजकल मायावादियों द्वारा अनुवाद भागवत का सर्वत्र प्रचार हो रहा है। बिना गुरु के मुख से श्रवण से इस चीज की अच्छी तरह से व्याख्या नहीं हो सकती। अब वो कल जो बतलाया था उसका थोड़ा सा रिपीटेशन करके तब फिर आगे बढ़ूंगा। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने कहा उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों का महाभाव देखा रूढ़ अधिरूढ़ भाव देखा और बड़े विस्मित हुए कि आज ये कृष्ण की कृपा है। उसमें भी वो कृष्ण की ही कृपा लेते हैं। कृष्ण की कृपा है कि गोपियों के ऐसे भावों को देख करके और गोपियों के साथ में संग करने का मुझे सुयोग मिला। भक्तों का संग बड़ा भारी दुर्लभ है। भगवान का संग हो किंतु भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनका संग भगवान के संग से भी दुर्लभ है। कभी कभी महाप्रभु के संग की अपेक्षा राय रामानंद जी का संग कहीं कहीं उनके संग की अपेक्षा तुम लोगों को रुचि नहीं रहती, आगे क्यों नहीं आता? हरिप्रिय कहाँ है? हरिप्रिय कहाँ है? कभी कभी महाप्रभु के संग से जो नई चीज मिलेगी, रारामन स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी के संग से, रघुनाथ दास गोस्वामी के संग से वो चीजें प्राप्त हो सकती है। इसलिए महाप्रभु जी स्वयं कहते हैं, मैं हरि कथा नहीं जानता, जाओ रामानंद के पास, स्वरूप दामोदर के पास में जाओ। यहाँ तक कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु इन भावों को जानने के लिए रामानंद के पास में, स्वरूप दामोदर के पास में ये इन भावों को हृदयंगम कर रहे हैं। रसराज स्वयं होने पर भी राधिका जी के भावों को जानने के लिए इन लोगों का संग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सनातन गोस्वामी इस चीज को समझते हैं, क्योंकि वो लवंग मंजरी हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, जो उद्धव जी बड़े आश्चर्य के साथ में कह रहे हैं, और मैं कहां व्यभिचार दुष्ट, क्यों व्यभिचार दुष्ट? अपने प्रभु के वचन पर हमें विश्वास नहीं। क्या विश्वास नहीं? कृष्ण की माधुर्यमयी या गोपियों की जो पार्थिव भाव युक्त उन्नत उज्जवल जो रस है, इसको समझने के लिए ऐश्वर्य भाव को, भगवान के प्रति जो ऐश्वर्य भाव है, उसको दूर करना पड़ेगा। जब तक कृष्ण के प्रति यह भाव रहता है कि ये सरस्वज्य पूर्ण स्वयं भगवान है, जब तक यह रहेगा भाव, तब तक उनको ब्रज की प्रेममयी भक्ति कदापि नहीं हो सकती। जब सखा के रूप में, माता के रूप में, और ब्रजवासियों की, गोप्रमणियों की, जो कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेममयी लौकिक सद्बंधवत जो भाव है, उसके द्वारा कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मैं इनकी बात को नहीं मानता, इसलिए मैं, मेरी भक्ति जो है व्यभिचारी है, मैं व्यभिचार दुष्ट हूं। मेरा अधिकार इन गोपियों के संग में आने का नहीं है, किंतु कैसा ये प्रभु की कृपा, अहत की कृपा, जाए इन गोपियों का संग हमें मिला। तो कहां ये गोपियां और कहां मैं? क्वे मा स्त्रियो, क्वे इमा ब्रज स्त्रिय, और कहां मैं? क्वा क्या ये सब, कहां मैं, कौन मैं? वो तो वृंदावन में भी, विष्णु के वन में, वृंदावन में विचरण करने वाली, और अब व्यभिचार दोष, व्यभिचार का दोष उसमें नहीं गोपियों में, उनमें रूढ़ महाभाव है। कैसा है ये बतला रही है? स्वाभाविक ही है, किसी साधन के द्वारा गोपियों का यह भाव जो रूढ़ भाव है नहीं, स्वाभाविक रूप में है, जब से है तभी से है। तो सब गुली चलिए बच्चे। कहां मैं व्यभिचारी हूं और कहां ये गोपियां हैं? वनचरी विष्णु के वन में, वृंदावन में विचरण करने वाली, कृष्ण का अनुसंधान करने वाली, और कैसे रूढ़ भाव के साथ में, स्वाभाविक रूप में, ये हो गया था ना। और कहां मैं? ऐसी भक्ति से विहीन हूं, मैं ऐसी भक्ति का पालन नहीं करता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मेरा कृष्ण के प्रति सर्वस्पर्य पूर्ण भगवत्ता का भाव है, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। आज जब तक यह भाव रहेगा गोपियों का भाव कदापि नहीं आ सकता। सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है, उद्धव जी माने ये कह रहे हैं, भक्ति की कैसी महिमा है, ये कृष्ण की महिमा बतला रहे हैं साधारण लोग, सनातन गोस्वामी गोपियों की महिमा बतला रहे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके भाव की, भक्ति की क्या महिमा बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्ति एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है, अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति में भी प्रवेश कर अत्यंत दुराचारी निकृष्ट व्यक्ति सदाचार विहीन लंपट जुआचोर ड्रंकर कोई भी हो, किंतु भक्ति देवी उसके अंदर में जब प्रवेश करती हैं तो जगत में उसको सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है। वो सब वैष्णवों के भी वंदनीय, उनको नारद और उद्धव जैसे लोगों के वंदनीय बना देती है। भक्ति एक ऐसी चीज है कुछ दिन, इसीलिए बतलाया अपिचेतु दुराचारो भजते मामनन भाग साधुरे वस मंतब्द सम्यग व्यवसितो क्षिप्रम भवति। वो धर्मात्मा ही भवती कहा गया, वो ऐसे ही उस समय भी धर्मात्मा है। एकांतिक जो भक्ति है ये बड़े बड़े सदाचार वाले और साधारण वैदिक भक्ति करने वाले से बहुत ऊंचे हैं। ये लोग बहुत ऊंचे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। उद्धव जी ये समझ करके गोपियों को की वंदना, चरणों की वंदना करके कह रहे हैं, देखो गोपियों के हृदय में ऐसी जो भक्ति है, जो व्यभिचार दुष्ट भले ही और नीच जाति की गोप जाति की है, गोप को शुद्र माना गया है और कहीं कहीं उनको वैश्य माना गया है। उसमें जो जात होते हैं गोपों में, तीन प्रकार के, अहीर गोप और जात। उसमें जात जो होते हैं वो थोड़ा सा निम्न कुल में होते हैं, और गोप जो होते हैं वो इनमें श्रेष्ठ हैं। नंद बाबा जी गोप थे, किंतु उसमें उनके परिकरों में परिवार में जात भी थे अहीर भी थे। वो लोग जाहिल और माने अहीर जो होता है ना बाहर जाहिल होते हैं, जाहिल जाहिल बंगला शब्द में नहीं है, जाहिल माने 80 वर्ष के बाद में सवालक होते हैं। वो समझते नहीं है कुछ। घोड़े के ऊपर में चढ़ना है तो घोड़े के काट करके उसमें सीढ़ी बनाएंगे चढ़ेंगे। ऐसे भी लोगों के हृदय में जब भक्ति है तो ये जगत को पवित्र बनाने वाले बन गए। नारद इत्यादि उनकी चरणों की वंदना करते हैं, सुखदेव गोस्वामी उनकी चरणों की वंदना कर रहे
हैं।
इसीलिए तो बतला रहे हैं, अब ये बतला रहे हैं, जैसे तीन प्रकार के गोपियों में व्यभिचार हो, स्त्रियों में व्यभिचार होता है। एक व्यभिचार यह है कि जो स्त्री अपने पति के साथ भी रहती है और किसी उपपति के भी साथ में रहती है, दोनों के साथ में, ये शास्त्र में लोक समाज सर्वत्र ये अत्यंत गर्हित है, निंदनीय है। दूसरी एक होती है जो अपने पति के प्रति तनिक भी भाव नहीं है, उपपति में ही उसका एकमात्र एकांतिक पहले से ही आरंभ करके अंत तक
भगवान के
नहीं। दूसरे जैसे जैसे जयदेव की पत्नी का नाम क्या था,
जयदेव
वो नहीं है, चंडीदास, हाँ, वो बचपन से ही उनके प्रति आसक्त थी, उसकी विवाह अन्यत्र हो गया था, किंतु ये लोक समाज और शास्त्र से बहिर्गत होने पर भी, मैं अत्यंत निंदनीय होने पर भी रस शास्त्र जो है इसके द्वारा ये उत्तम है। सुनो थारो, और तीसरी है जो विवाहित होने पर भी किसी से संबंध नहीं है, केवल कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझ करके उपपति मानती हैं, ये संसार में सर्वोत्तम है। ये लोग जो नहीं समझते हैं, लोग जो नहीं समझते हैं वो मूर्ख हैं, इनके चरणों में अपराधी हो जाते हैं इन लोगों को, इसलिए ये निंदनीय नहीं। कोई भी स्त्री जैसे पंचकुमारियां हैं, मंदोदरी, तारा, अहल्या, कुंती और मंदोदरी, इनका दूसरे पतियों के साथ में शादी थी, मंदोदरी की भी रावण से, अहल्या जी का गौतम, तारा का बाली से इसके बाद सुग्रीव से पीछे हुआ, और द्रौपदी के 5 पति और कुंती के भी 5-6 पति, किंतु ये कुमारी कन्याएं कहलाती हैं। कुमारी मैंने जिनका विवाह है उनका नाम लेने से पतिव्रताओं का व्रत भी अचल हो जाता है, तो भी यही तो कहते हैं, इसी को बतला रहे हैं। ये पतिव्रताओं के भी ये पूज्य हैं, यदि इनका नाम प्रतिदिन लें तो ये परम पूज्य बन जाएंगे। ये कन्या हैं, कन्याओं से भी पवित्र हैं। क्यों? इनके अंदर में कृष्ण भक्ति है, भगवत भक्ति है। मंदोदरी का राम के प्रति, तारा का राम के प्रति, पांच द्रौपदी का कृष्ण में, कुंती जी का कृष्ण में, ऐसे कृष्ण में भक्ति थी। अहल्या का भी राम में। तो कोई भी स्त्री हो अपने पति के प्रति भाव ना रख करके कृष्ण के प्रति ही अपने पति का उपपति का भाव कोई रखे तो वो संसार में सर्वोत्तम है। गोपियां इन लोगों में से सबसे उत्तम है। गोपियां बल्कि इस कोटि में भी नहीं रखी जाएंगी, वो कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। कल हमने इस तरह की व्याख्या की थी। इसलिए ये जन्म से ही कृष्ण के प्रति इनकी स्वाभाविक रूढ़मयी भक्ति है। रूढ़ मैंने महाभाव, रूढ़ अधिरूढ़ यहाँ तक है। और राधिका जी में इसे भी बहुत ऊपर, मोदन मादन, मादन जो और किसी में नहीं है, ऐसे ये भाव ये राधिका जी के लिए भी इसमें भी
है। भवन और मादन थोड़ा सा बता दीजिए, है भवन मादन के बारे में कुछ बता।
मोहन का ये है, जब विरह होता है, विरह में गोपियों की जो प्रजल्प, चित्रजल्प इत्यादि, उसको क्या कहते हैं,
चित्रजल्प,
और प्रेम 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 वैचित्र जब होता है, मिलन हो, मिलन में ही विरह उनको होता है।
जैसे पास में रहने के लिए समस्या नहीं है,
नहीं मैंने कृष्ण कहाँ चले गए, ऐसे विरह में रहते हैं। तब उसको मिलन में मोहन मोदन मोदन, और विरह में उसी को मोहन कहते हैं। और इसके ऊपर में श्रीमती राधिका जी का भाव है, जिसका वर्णन कहीं करने नहीं किया जाए। वो है कृष्ण की गोदी में बैठी हुई भी ऐसे समझती हैं कि कृष्ण हमसे कहां जाने कहां चला जाए, और विरह में उन हंसती हैं और कृष्ण से मिलती हैं, तमाल को देकर के, दादलों को देकर के, अपने केशों को देकर के तमाल से एकदम लपेट जाएंगे। ये राधिका के अतिरिक्त और उसमें क्या क्या विचित्र अवस्थाएं होती हैं कोई नहीं वर्णन कर सकता। जितने भाव बतलाए उसमें भी है, उससे भी अधिक ऊपर में है। तो ये गोपियों के प्रति जरूर भाव है। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते ये तीन प्रकार की स्त्रियां होती, इसमें गोपियों का यह रूढ़ भाव, रूढ़ भाव माने क्या, स्वाभाविक जन्म से, जन्म माने उनका तो जन्म ही नहीं है, जब से वो हैं जहां हैं तब से ये रूढ़ भाव उनको स्वाभाविक है। वो साधन भक्ति के द्वारा, भाव भक्ति के द्वारा उनको ये प्राप्त नहीं हुआ है। उद्धव जी कहते हैं कि हमको ये सब दर्शन का, कभी दर्शन करके समझने की हमारी शक्ति नहीं है। ननीश्वरों भज तो अभी तुलसो अभी साक्षात। अब सनातन गोस्वामी जी किसी का आरंभ करते हैं। कोई भी व्याकरण वाला पंडित इसको नहीं समझ सकता, उसके द्वारा संभव नहीं है। लाख जन्म पढ़े ये गुरु से, एक मूर्ख व्यक्ति भी गुरु से, वैष्णव से, भागवतों से सुन करके इस चीज को ग्रहण कर सकता है, उसके अंदर में आएगी, उसके द्वारा समझ सकता है। जैसे हमने कल बताया गौर कुशोदास बाबा जी महाराज, लोकनाथ जी, हमारे हरिदास ठाकुर जी, और ये भजन प्रीति कैसे लाए जाएगी हृदय में, ये पढ़ लिख करके कुछ नहीं होगा, ये कैसे प्रीति आएगी, प्रीति की अनुभूति। ऐसे महापुरुषों के, इन गोपियों जैसे, गोपियों का अनुगत करने वाले जो लोग हैं, साधन भजन करते हैं, उनका संग यदि किया जाए तो संभव हो सकता, अन्यथा नहीं। इसलिए उद्धव भी गोपियों का संग मांग रहे हैं, बल्कि संग नहीं, उनकी चरण की धूली को बहुत दूर से वंदना कर रहे हैं। विरहीन महाभागा क्या है वो,
महान अनुग्रह,
हाँ महान अनुग्रह। गोपियों ने इस विरह भाव को हमारे सामने थोड़ा सा व्यक्त करके हमारे ऊपर में ऐसा अनुग्रह किया है जो कि कृष्ण ने अनुग्रह नहीं किया, उनको हमको नहीं बतला सके। इन गोपियों का मान ऐसे लोगों का संग करने के लिए भी योग्यता चाहिए, संस्कार चाहिए, नहीं तो नहीं समझ सकेंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इमा, अंगुली से निर्देश करके कौन गोपियों को, इमा इनके जगत में सबसे श्रेष्ठ महात्म है। यहाँ तक कि वयम, वयम मैंने मैं, अक्रूजी नारद जी, इनकी महिमा समझने लायक हम योग्य नहीं हैं, इनका संग करने योग्य नहीं है। न जाने प्रभु ने कैसे हस्तिक पर इनका कुछ मुझे संग दे दिया है। संग से क्या होता है, यदि सम्यक रूप से उनका अनुगमन किया जाए तो इनके हृदय के भाव जो होते हैं सरल स्निग्ध शिष्यों के हृदय में वो संक्रमित कर देते हैं। जैसे उसमें बतलाया है, गोप कुमार जी ने बताया कि हमारे गुरु जी ने हमारे ऊपर महाशय हाथ रख दिया, जाओ, साथ ही साथ में मैं उसकी अनुभूति कर लिया सर, इतना सुनने पर भी हमको नहीं हुआ। ये सब गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, भागवतों की कृपा है। इसे जितने प्रकार के संग वैष्णवों के हैं उनमें गोपियों का संग जो है सबसे श्रेष्ठ संग, इसे बढ़कर यहाँ तक कि कृष्ण के संग से भी बढ़कर के गोपियों का संग है। परम विस्मय के साथ में कह रहे हैं, ओ मैं क्या कहूं, परमात्मा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण में इनका ऐसा रूढ़ भाव स्वयं प्रादुर्भूत हुआ, किसी साधन से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, गोपियों के ऊपर में किसी ने कृपा की कि गोपियां सब पर कृपा करेंगी, इसलिए गोपियों के ऊपर में कोई कृपा करके या भगवान ने ही कृपा करके ये भाव दे दिया, ये गलत बात है। उनका स्वाभाविक है, क्यों कि कृष्ण की कला माने स्वरूप शक्ति है। ये जो मैं इनका जो रूढ़ भाव देख रहा हूँ, रूढ़ भाव मैंने क्या, गोपियां उद्धव से वार्तालाप कर रही थी, उन्होंने कहा जी उद्धव देखो तो प्रेम जो निस्वार्थ होता है वो तो कभी नहीं टूटना चाहिए, जो स्वार्थ वाला प्रेम है ये टूट सकता है। भौरों का फूलों से कुछ स्वार्थ है, उस स्वार्थ को पूरा कर लेने के बाद, उसका मधुर चयन कर लेने के बाद में कामी पुरुष स्त्रियों से जो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है उसे कोई संबंध नहीं। स्त्रियों के भी ऐसे ही जैसे वेश्याओं इत्यादि का, फिर हमारी प्रीति तो निस्वार्थ थी, कृष्ण की भी हमारी कैसे टूट गई। और इसके बाद में उद्धव कुछ बोल नहीं रहा, भौरा कुछ बोल नहीं रहा है, और भी प्रजल्प करते 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 हा नाथ रमानाथ प्रजनार्थी नाशन समुद्धरा गोविंद गोकुल एक अतः में मूर्छित होकर के गिर पड़े। उद्धव जी देखते रह गए, उद्धव के अंदर में तनिक भी ऐसे भाव नहीं हुआ, समझ नहीं सके। उद्धव के लिए भी अब अगम्य भाव, इसलिए यहां कहते हैं यह रूढ़ भाव उसका लेश मात्र भी जगत में कहीं नहीं देखा जाता। सीता जी का राम के प्रति भाव है, द्वारका की पटरानियों का भी कृष्ण के प्रति, रुक्मिणी सप्तभामा का और नग्न जित्या भीष्मक नंदिनी इत्यादि के बहुत सुंदर भाव है, किंतु गोपियों के समान किसी का इतना सुंदर कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव, ताई च कृष्ण क्व के द्वारा ये देख, और क्व पद ऐसा विश्व में कहीं भी, क्व कहीं भी विश्व में किसी भी भक्त में ऐसा नहीं भाव है जैसा गोपियों में भाव है। भक्त इन कथाओं को सुन करके क्या करता है, यह भाव हमारे अंदर में कब आए, ऐसा भाव कैसे आएगा। यदि कोई आदमी भजन करे ऐसा रूप रघुनाथ की भांति गोपियों के अनुगत्य में, तो उनका जो संबिद और लादिनी का जो सार भाव है शुद्ध सत्व जीव के हृदय में कभी आ सकता है, इन कथाओं के माध्यम से ही आ सकता है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। लाख साधन भजन करते करते रस पच जाओ, यहाँ तक व्याकरण की पहुंच नहीं है। साधारण लोग ये तो है, वैसे अनुगत्य में जो भजन करेगा वही समझेगा, उनके पास में भजन करके और श्रवण करने से ये भाव आ सकता, दूसरा कोई भी उपाय नहीं। इसीलिए इसकी लालसा से करें कि हमको कभी गोपियों की कृपा मिल जाए, अथवा अर्थ प्रयोग के द्वारा यह अर्थ इसका होगा इस प्रकार स्वयं प्रादुर्भूत रूढ़ भाव क्या किसी को उत्पन्न हो सकता है? नहीं। किसको उत्पन्न होगा? एक गोपी, महाप्रभु जी ने कहा ना, एक गोपियों का अनुगत करने के अतिरिक्त उनके अनुगत्य में भजन करने के अतिरिक्त ये भाव कभी नहीं। बस एक उपाय है, इसलिए सनातन गोस्वामी जी इस चीज को बतला रहे हैं, किसी में भी संभव नहीं है। यहाँ पर दो 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 बार क्वा क्वा लिखा है, इसका मतलब क्या? जैसे एव का तीन बार प्रयोग, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐ व केवलम, ऐसे ये क्वा क्वा दो बार दिया गया है, इसका क्या तात्पर्य? कहीं विश्व में गोपियों के जैसे भाव नहीं है। यदि किसी को उनके प्रति ऐसा लोभ हो, जो ऐसे ही भाव हमें हो जाए उनमें से किसी के प्रति, और वैसा साधन भजन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की भाव से यदि कर सकता है तब ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। यहाँ पर परमात्मा, परमात्मा है ना, ननु, यहाँ पर इसका ये परम माने श्रेष्ठ और आत्मनि माने गोपियों के आत्मा का भाव, इसको और बतला रहे हैं। यह भाव यदि गोपियों का अनुगत किया जाए, उनका संग हो, तभी ये भाव उस किसी के हृदय में रूढ़ भाव उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो यदि नहीं जानबूझ करके भी गोपियों का कोई ऐसा अनुगमन करे, मूढ़ व्यक्ति भी यदि गोपियों जैसा भजन करे, जैसे दंडकारण्यवासी ऋषि लोग, जौथ की अजौथ की गोपियां, इन लोगों ने भजन किया दिन रात उसी की चिंता में, इसी तरह से यदि कोई भजन करे उनके अनुगत्य में, या रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि ने दत्त दिखलाया, किस प्रकार से अंतर में अपने उस भाव के द्वारा ललिता विशाखा इत्यादि के अनुगत्य में भजन करती हैं, ऐसा यदि कोई भजन करे, मूढ़ व्यक्ति भी, विद्वान के लिए भी नहीं, मूढ़ व्यक्ति भी रहे और ऐसे वैष्णवों के अनुगत्य में जो उनके अनुगत में चलने वाले हैं, तो ईश्वर साक्षात उनका कल्याण करते हैं। ईश्वर मैंने यहाँ पर गोपियां कृपा करती हैं, गोपियां वो भगवान की ही कृपा, क्यों? शक्ति शक्ति मतो रभेदः, एक ही बात है, गोपियों की कृपा कृष्ण की कृपा, कृष्ण की कृपा गोपियों की है। दंडकारण्य वासी गोपाल मंत्र में कृष्ण की आराधना कर रहे थे लाखों वर्षों से,
गोपी रूप में
नहीं, गोपी रूप में नहीं, पुरुष थे,
गोपी रूप नहीं,
सुनो तो, तो रामचंद्र जी को देख करके पहले तो धीरे धीरे जैसे हम लोग भजन करते हैं ना, खाते पीते हंसते हैं, इधर उधर जाते हैं, सांसारिक भावना रखते हैं, ऐसे वो कर रहे थे, हृदय में था जो गोपी भाव की लालसा उनके अंदर में है, किंतु जब रामचंद्र जी को देखा तो वो कंठा उनकी बढ़ गई और वो बड़े निविष्ट चित्त से अनुरागमयी भक्ति करने लगे। रामचंद्र जी ने उनको देखा, रामचंद्र जी को देख करके कृष्ण से मिलता हुआ उनका रंग रूप, और बस रामचंद्र जी ने जाना, जब अवगत हुए तो मनी मन में कहा तुम लोगों की सिद्धि जरूर होगी, इस जन्म में नहीं इसके बाद में गोपियों के घर में तुम लोग जन्म लेगी और गोपी के घर में गोपी बनेगी और फिर वहाँ गोपियों संग जो नित्य सिद्धा हैं उनका संग पा करके फिर तुम्हारा जो कुछ कषाय है वो दूर हो जाएगा और कृष्ण की लीला में हमारी लीला में तुम प्रवेश करेंगे। इसके बाद में गोपियों के घर में उनका जन्म हुआ किंतु कुछ दोष था इसलिए उन्होंने ही कत्यायनी व्रत किया। कत्यायनी व्रत ये साधक है ना, साधन सिद्ध, इसलिए इन लोगों ने कत्यायनी व्रत किया और कत्यायनी व्रत करने के बाद में कृष्ण स्वयं आए और उनको वरदान दिया, तब उनका वह जो कषाय था वो दूर हो गया और फिर नित्य लीला में। इसलिए मैं मूढ़ व्यक्ति हूँ, हमारे केवल भगवत भक्ति वाला